नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू। बिहार में 17 अप्रैल से होगी प्रथम चरण की शुरुआत। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान में फंसे 1171 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू। किसान 15 जून तक पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए बेच सकेंगे गेहूं। और नालंदा के शीतला मंदिर में हुई भगदड़ मामले में 5 गिरफ्तार। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। अब समाचार विस्तार से। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। बिहार में जनगणना की शुरुआत 17 अप्रैल से होगी। एक रिपोर्ट।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 17 अप्रैल से 1 मई तक स्व गणना होगी। इस अवधि में नागरिकों को ये सुविधा दी गई है कि वो वेब पोर्टल के माध्यम से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना 2 मई से शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो जनगणना के स्वगणना तथा मकान सूचीकरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही और स्पष्ट उत्तर दें, साथ ही जनगणना में लगाए गए कर्मियों का सहयोग करें। समाचार कक्ष से निधिश्री।
जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान में फंसे 818 छात्र सहित 1171 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फंसे हुए सभी भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते जमीनी सीमा पार कर ईरान से निकाले गए हैं। श्री जायसवाल ने आर्मेनिया और अजरबैजान के अधिकारियों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। संवाददाता सम्मेलन में कृषि और किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश में सभी प्रकार की फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं। अपर सचिव ने कहा कि कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है।
जो राज्यों के साथ आंकलन किया गया है, इस खरीफ में 166.46 लाख क्विंटल के बीज की आवश्यकता होगी। जितने भी प्रमुख फसल हैं, उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान, जिसका सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है, 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द, इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है।
संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल का भंडार वर्तमान में पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है।
हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशियंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशियंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिव शामिल हुए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार पटना में 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर का दाम 220 रूपये बढ़कर 2,353.50 रूपये हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। किसान 15 जून तक पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए अपनी गेहूं बेच सकेंगे। सहकारिता विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 160 रूपये अधिक है। विभाग ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। इस वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य 18,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। सहकारिता विभाग ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612220693 भी जारी किया है। इधर शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सदर प्रखंड अंतर्गत हथियावा पैक्स में गेहूं खरीद की शुरुआत की। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए आज से टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रभावी हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी। एक रिपोर्ट।
नए नियम के अनुसार रात के 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली खपत पर कंपनी की ओर से निर्धारित दर के अनुसार ही बिजली बिल देना होगा। वहीं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली खपत करने पर लोगों को मात्र 20% कम बिल का भुगतान करना होगा, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक निर्धारित दर से 20% अधिक बिल देना होगा। इस फैसले से 87 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। स्मार्ट मीटर नहीं होने की स्थिति में जिन भुगतानों का लोड 10 किलो वाट से अधिक होगा उनके लिए भी यह व्यवस्था रहेगी। पिछले वर्ष केवल औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था थी। समाचार कक्ष से अमरनाथ प्रसाद,
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जूट उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पटसन बोर्ड और भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर उन्होंने ये बात कही। समारोह को उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री सह खनन और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उनका विभाग राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिन्हा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,592 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रह हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है।
विभाग के अंदर 2025-26 में 78 घाट सरेंडर करने के बाद भी कल हमारा ईयर क्लोजिंग मार्च का 31 मार्च का 3,592 करोड़ रुपया का हम राजस्व संग्रह किए, जो पिछले बार से ज्यादा है। और जबकि बहुत सारे विभाग से राजस्व जो हमको आना था, कार्य विभाग से जो आ जाएगा इस महीने के अंदर आ जाएगा, तो हमारा राजस्व 3,592 करोड़ से ये बढ़कर करके लगभग 3,800 करोड़ से ऊपर हो जाएगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंचल कुमार ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय जाजू का स्थान लिया है। बिहार कैडर के अधिकारी श्री कुमार इससे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। रेलवे जम्मू तवी और छपरा के बीच 6 अप्रैल से एक विशेष आरक्षित रेलगाड़ी का परिचालन शुरू करेगा। इस ट्रेन से बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेन में वातानुकूलित स्लीपर और जनरल क्लास के कोच रहेंगे। राजगीर स्थित खेल अकादमी में आज से 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि 12 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमें भाग ले रही हैं। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मगड़ा शीतला मंदिर में भगदड़ में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत के मामले में पुलिस ने 5 पंडा को गिरफ्तार किया है। इन सभी पंडा पर पैसे लेकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का आरोप है। साथ ही इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 20 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बीच बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने आज मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कल की घटना में प्रबंधन स्तर पर चूक हुई है। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिरों का पंजीकरण और बेहतर प्रबंधन को अनिवार्य किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने डीआरडीए के निदेशक वैभव कुमार के सहरसा के नया बाजार और मुजफ्फरपुर स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की गई। वैभव कुमार पर पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 2,41,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक खगड़िया जिले के बेलदौर में 26.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।
दिनांक 1 अप्रैल 2026 राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर समस्त राज्य में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध में जान गंवाने वाले बिहार के देवनंदन प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर आज भागलपुर पहुंचा। वे अमरीकी तेल टैंकर पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई थी। पटना विमेंस कॉलेज में साइंस विदाउट बाउंड्रीज कोलैबोरेटिव रिसर्च फॉर द 21st सेंचुरी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आज शुरुआत हुई। सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। शेखपुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से आज से पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने पंजीयन की शुरुआत की। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड क्षेत्र के शंभुगंज बहियार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से सैकड़ों एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। सासाराम जिला मुख्यालय में नई श्रम संहिता के खिलाफ मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया। कटिहार जिले के समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जनगणना का पहला चरण आज से शुरू। बिहार में 17 अप्रैल से होगी प्रथम चरण की शुरुआत। केंद्र सरकार ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान में फंसे 1,171 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू। किसान 15 जून तक पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए बेच सकेंगे गेहूं। और नालंदा के शीतला मंदिर में हुई भगदड़ मामले में 5 गिरफ्तार, मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।